अभी आप सबके सामने एक ब्यूटीफुल टॉक शो है जो हमारे बहुत एक्सपीरियंस्ड लोग यहाँ करने वाले हैं। उससे पहले मैं नेहा बहन से, जो हमारी राजूला गुजरात से आए हैं, विशेष आप सबके लिए एक संदेश लेकर आए हैं। मैं नेहा बहन को आमंत्रित करती हूँ स्टेज पर। आइए नेहा बहन, वो अपने संगीत और नृत्य के माध्यम से आपको एक संदेश देना चाहती हैं। थैंक यू वेरी मच नेहा बहन, बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेश के लिए। अब मैं अपने आदरणीय गेस्ट से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो कृपया मंच पर आए। हमारी दीपिका बहन, साथ ही साथ हमारे अक्षय भाई, आकाश भाई आइए। हमारे राकेश भाई गर्ग जी जो भोपाल से आए हैं, हरिपाल भाई जी जो दिल्ली से आए हैं, साथ ही साथ हमारे मनु भाई जो अंबाला से आए हैं, और हमारी आदरणीय मीरा दीदी जी, और हमारी गिरिजा बहन जो लोधी रोड दिल्ली से आए हैं। मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। मैं हमारी बहनों से नम्र निवेदन करूंगी कि हमारे आदरणीय अतिथियों का पुष्प गुच्छ से स्वागत करें। थैंक यू वेरी मच हमारी बहनों को। आज का ये टॉक शो का एक सुंदर मुझे ये विषय मिला है, और विषय है जर्नी फॉर एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण के लिए हमारी यात्रा। हम यहाँ आए हैं, हम सभी जानते हैं कि जीवन एक यात्रा है, और इस यात्रा में अनेक पड़ाव आते हैं, और अनेक पड़ावों से हम जैसे जैसे गुजरते जाते हैं, उन पड़ावों को जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो उन्हें सराहना शुरू करते हैं। याद करते हैं हम अपने बचपन को, जब हम छोटे से बच्चे थे, हमारा पहला पड़ाव था घर छोड़कर स्कूल जाना, जिसके लिए हम बहुत रोया करते थे कि नहीं, हमें स्कूल नहीं जाना है, घर नहीं छोड़ना है। लेकिन जब हम घर छोड़कर स्कूल गए तो मुस्कुराने लग गए। और फिर पड़ाव आया जहां हम स्कूल से कॉलेज, और कॉलेज के बाद फिर अपने रियल कर्म क्षेत्र पर पहुंचे, वो कर्म क्षेत्र जहां स्कूल और कॉलेज हमें तैयार करता है, जहां जाकर हम इस संसार में रहते हुए संसार के साथ मिलकर चलने का युद्ध शुरू करते हैं। अब कई लोग ये समझते हैं ये युद्ध कैसे है, क्योंकि लोगों के साथ मिलकर चलने में कैसा युद्ध, उसमें तो सहयोग की भावना है। बट मैं ये सुनती आई हूं कि लाइफ इज अ बैटल, जीवन जो है एक युद्ध है, और मैं इस युद्ध को देखते आ रही हूं कि लोग कई बार अपने साथ करते हैं तो कई बार दूसरों के साथ करते हैं। लेकिन ये युद्ध क्या है? बिकॉज जब हम इस जर्नी जीवन यात्रा में सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो पहली बात तो हमें ये समझने की है कि ये जीवन यात्रा क्या है, और इस जीवन यात्रा में किस प्रकार का युद्ध चल रहा है। तो मैं आदरणीय दीपिका बहन से पहले शुरू करना चाहूंगी, क्योंकि जब मैं इनका परिचय पढ़ रही थी और कुछ समय से इनके बारे में सुन रही थी, तो वुमेन एम्पावरमेंट की बात की जाती है, वो ये शब्द हमेशा कहती है कि नारी को सशक्तिकरण करना चाहिए और उनको समान स्तर दिया जाना चाहिए। ऐसे अनेक भावनाएं इनके मन में रहती है और जिनके लिए ये कार्य करती रहती है, और यही इनके लाइफ स्टाइल है। तो मैं सबसे पहले दीपिका बहन से ये सवाल करना चाहूंगी।
ओम शांति। जो मेरी खुद की लाइफ की एक्सपीरियंस रही है कि मैं जब शादी होकर मेरे लौकिक फैमिली, हस्बैंड की फैमिली में, युगल की फैमिली में गई थी, तो वहां पर मैंने मुझे सबसे पहले स्कूल संभालने को दिया गया था, और जो रीजन था, जो स्कूल ओपनिंग का, जिसका नाम है विद्या देवी जनरल स्कूल था, रीजन ये था कि जब आप एक घर में एक लड़की को या एक वुमन को आप जब एम्पावर करते हो, तो आप दो दो घर को साथ में एम्पावर करते हो, खुद के घर में और जिस घर में वो जाती है उस घर में। उसके बाद जब मैंने खुद अपने जब काम शुरू किया, तो मैंने अपने जो प्रोफेशनल लाइफ के साथ होम लाइफ को जिस तरह से मैं हैंडल कर पाई, उसमें इतना फर्क पाया, क्योंकि जो सेल्फ वर्थ जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। टिल आप में, जब में वो सेल्फ एम्पावरमेंट एंड सेल्फ वर्थ नहीं आता, आप खुद में कंप्लीट नहीं फील करते हो, और फिर वो आप आगे नहीं दे पाते हो। तो तब मुझे ये इसका एहसास हुआ कि how important it is to be first self-empowered and self-confident and self-sufficient before you can give what you have. Because till you don't have, you cannot give.
I agree with this beautiful thought, self-worth. और आकाश भाई आपका तो प्रोफेशन ही ऐसा रहा है जहां से नीचे से ऊपर तक, क्योंकि आप सबको मैं बताना चाहूंगी हमारे आकाश भाई उड़ीसा में एक्टर के रूप में, मॉडल के रूप में और अभी एक नए समाज सेवक, ऐसा ही कहें राजनीति में भी है, इनका मैं स्वागत करना चाहूंगी हमारे ज्ञान सरोवर परिसर में। और मैं आपके सामने ये, क्योंकि हम कई बार ये बात सुनते आए हैं कि जो अभिनेताएं होते हैं, नेता होते हैं, उनके जीवन यात्रा में अनेक बातें आती हैं और उन बातों में वो अपने आप को खोजते हैं। जैसे अभी दीपिका बहन ने कहा, सेल्फ एम्पावरमेंट में, सेल्फ आइडेंटिटी में आना है। तो आपकी ये जो सेल्फ आइडेंटिटी वाली यात्रा रही, ये कैसी यात्रा रही और इसमें कौन कौन से ऑब्स्टिकल्स आपने देखे?
नमस्ते, ओम शांति, रिस्पेक्टेड गेस्ट ऑन द डायस एंड ऑफ द डायस। पहले तो मैं मेरे बारे में कुछ बताना चाहूंगा कि मैं उड़ीसा से हूं और उड़ीसा का जो पहला नाम है उसके पहले कलिंग था, उत्कल था। उत्कल का मीनिंग ये है कि जहां पे कला बहुत सर्वश्रेष्ठ होता है। कुछ समय पहले यहां पे छोटे छोटे बच्चे डांस कर रहे थे, कितने सुंदर डांस कर रहे थे, तो वो भी उड़ीसा के ही है। और मेरा जो जर्नी है, पहले तो आज का जो टॉपिक है एम्पावरमेंट के ऊपर, सशक्तिकरण के ऊपर, तो सशक्त होने से पहले हमें खुद को पहचानना बहुत जरूरी है मुझे जो लगता है। क्योंकि मेरे माँ भी पहले आगे बैठे हैं, तो जब मैं बचपन से यहां तक जब आया, बचपन में बहुत ही शाय नेचर, बहुत कम बोलता था, बहुत ही शाय नेचर, मैं भी थोड़ा कॉन्फिडेंस का भी बहुत कमी था। लेकिन जब जो जर्नी मेरा लाइफ के जर्नी आगे बढ़ा, जब जब मैंने खुद को पहचाना, जब जब मैंने खुद को जाना और मैं ऐसे फील्ड में हूं, 2007-8 से मैं उड़िया फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिव हूं, अराउंड 30 ओडिया एंड बेंगलीज मूवी में कर चुका हूं और 2014 से आई एम एक्टिव इन पॉलिटिक्स। वहां पे 2014 में इलेक्टेड एज एमएलए के तौर पे चुना गया और अभी 2019 से आई एम हेड ऑफ मो कॉलेज अभियान। उड़ीसा के जितने सारे कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, अराउंड 4000 कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज का चेयरमैन हूं और जो हायर एजुकेशन का फील्ड को संभाल रहा हूं। तो इतने सारे फील्ड में मैंने एक चीज जो मैंने आपको पहले ही बता चुका था कि बहुत सारे चैलेंजेस आए लाइफ में। पहले तो ये है कि खुद के अंदर जो बहुत सारे, कभी कभी क्या होता है कि हम खुद ही को रोकते हैं, तो उसे पहचानना बहुत जरूरी है कि हमारे अंदर क्या खूबी है और हमारे अंदर क्या चीज है जो हमें रोक रहा है आगे जाने के लिए। तो आई थिंक कि आगे इंस्पायर होने के लिए या फिर स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट पाने के लिए खुद को पहचानना बहुत जरूरी है। थैंक यू।
ये शब्द जो कहा कि स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट में खुद को पहचानना बहुत जरूरी है और ब्रह्मा कुमारी इसमें इस बात को सबसे प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि सेल्फ आइडेंटिटी ही, क्योंकि हमारा एक ही मोटिव है, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन से ही वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। तो ये जो सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन या सेल्फ को पहचानने की यात्रा है, मैं आदरणीय मीरा दीदी से पूछना चाहूंगी। वैसे तो हम पास्ट दो दिन से उनके बारे में, उनसे सुन रहे हैं, उनको देख रहे हैं और मैं कईयों से सुनती आ रही हूं, क्योंकि इस पूरे रूटीन में मैंने देखा कि जब भी लोग मुझे पूछते थे, दीदी आपके बारे में पूछते थे कि आप कितने साल के हैं और आप इतने यंग कैसे दिखाई देते हैं, तो कहीं ना कहीं हम समझते हैं इसमें आपके सेल्फ डिस्कवरी की बात है। तो हम भी जानना चाहते हैं कि ये सेल्फ डिस्कवरी वाला प्रोसेस क्या रहा आपका?
ओम शांति। बहुत सुंदर क्वेश्चन पूछा है। एज मेरी शारीरिक 77 स्टार्ट है।
77 इयर्स यंग,
ज्ञान में 61 इयर्स। और
लेट मी ऐड हियर,
मुझे यहाँ
लेट मी ऐड हियर, शी इज अ प्रोफेशनली, शी वॉज अ मैनेजर इन BOB यानी बैंक ऑफ बड़ौदा बिफोर गेटिंग डेडिकेटेड हियर इन ब्रह्मा कुमारीज। नाउ शी ऑल्सो मैनेजेस वन ऑफ अवर हॉस्पिटल इन मुंबई विच इज कॉल्ड एज BSCS हॉस्पिटल, वहां पे भी ये अपनी सेवाएं देती रहती हैं। और हम देखते हैं कि आप पार्टिसिपेंट से भी हम कहना चाहेंगे, अगर आप इनके वॉकिंग स्पीड को मैच कर सके तो बहुत अच्छा रहेगा।
मुख्य राज यही है कि परमपिता परमात्मा जो स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी है, वो हमारी जीवन के नैया के खेवैया है। तो जब हमने खेवैया का हाथ पकड़ा है जो सबसे सुप्रीम है, तो हमारे जीवन के अंदर शक्तियां, गुण और वैल्यूज आने लगती हैं। और इन गुणों को, वैल्यूज को हम रोज दोहराते हैं कि हमारे में कोई कमी तो नहीं है उन गुणों को धारण करने में। गुण को धारण तब नहीं कर सकते हैं जब शक्तियों की कमी है। आज बहुत सुंदर प्रवचन था मॉर्निंग में, जो सारे 9000 सेंटर्स पर 140 कंट्रीज में होता है सेम, कि हमें व्यर्थ विचार करना ही नहीं है। व्यर्थ विचार आ गया तो उसको NOT नोट एंड दूसरा DOT डॉट एंड स्टॉप, फुल स्टॉप। ये हमें जीवन में सभी को ही स्वीकार करना है, तब हमारे जीवन में वैल्यूज आने लगेंगी। और मैं एक बात याद रखती हूं, एक व्यक्ति था तो उसने भगवान को कहा, वो व्यक्ति बहुत ही धैर्यता बिगड़ का था, बहुत ही जल्दीबाजी करता था, तो उसने भगवान को कहा, ओ गॉड गिव मी पेशेंस बट प्लीज हरी अप। तो ये हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात याद रखती हूं कि जैसे गंगा नदी है, उसका जो उद्भव स्थान है वो गंगोत्री है, वो स्रोत है, वो मूल है, वो सोर्स है। यमुना नदी का जन्मोत्री है। तो ठीक उसी ही तरह से शक्तियों का, सारी सर्व शक्तियों का स्रोत जो है, मूल जो है, सोर्स जो है, वो परमपिता परमात्मा है। और इसीलिए हमें इस जीवन के अंदर एक बात जरूर याद रखनी है कि जीवन मिला है अनमोल, सुन लो प्रभु के ये बोल, गफलत में न रहना, यही है प्रभु का कहना, यही है प्रभु का कहना। ओम शांति।
बहुत सुंदर दीदी आपके विचार हैं। और जैसे शब्द दीदी ने अभी कहा, गफलत, गफलत यानी हमारी अपनी कमजोरियां, और इसी को जीतने का नाम ही एम्पावरमेंट है। क्योंकि शक्ति वहां नहीं चाहिए होती जहां हमारे वैल्यूज हैं। वैल्यूज को जब कोई सुनाता है, हमारी प्रेज करता है, तो हमें बड़ी खुशी होती है। लेकिन शक्ति वहां चाहिए होती है जहां हमारी वीकनेस बताई जाती है, जहां हमें करेक्शंस मिलती है, और जहां एक व्यक्ति उस स्तर पर, उस समय अपने आप को स्टेबलाइज रखता है, स्टेबल कर पाता है, स्वीकार कर पाता है, तभी वो अपने जीवन नैया में आगे बढ़ पाता है। तो इसी बात को थोड़ा सा और स्पष्ट करने के लिए मैं मनु भाई से कहना चाहूंगी, क्योंकि वैसे भी वो शिप के कैप्टन हैं, वो जहाज को भी डायरेक्शन देते हैं। तो मैं मनु भाई से ये पूछना चाहूंगी कि अपनी कमजोरियों से निकलने का और उसे फेस करने के लिए हमें कौन सी बात अपने अंदर लेनी होगी।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। दीदी ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं, जैसे आकाश भाई ने बताया, तो अपने बचपन से मैंने ढूंढा भगवान को, खोजा खोजा खोजा, बहुत खोजा, बहुत स्क्रिप्चर्स पढ़े, भगवद गीता पढ़ी, बोधि गीता पढ़ी, कुरान पढ़ी, काफी कुछ छोड़ा, भगवान मिला नहीं। फिर फाइनली थोड़ा पास फाइनली आई वॉज प्रीचिंग भगवद गीता टू माई फ्रेंड्स, माई रिलेटिव्स ऑन जूम, बिकॉज कोविड था उसके पहले से भी, बट खुद को कई जगह बहुत तकलीफ होती थी बिकॉज लिंकेजेस वर नॉट क्लियर। कई ऐसे लिंकेजेस हैं जो अपने आप में मतभेद करते हैं, एक शास्त्र दूसरे शास्त्र से मतभेद कर देता है कई जगह में। तो मतभेद होने से क्या है कि आदमी कंफ्यूज हो जाता है। देता तो जरूर था, ज्ञान दे देता था पढ़ के, हाँ भाई संस्कृत पढ़ी, संस्कृत में आई हैव स्टडीड टिल 12th, तो तब तक तो बता देता था लोगों को, बट खुद को डिग डाउट रहता था कि नहीं ये सही नहीं है, समथिंग इज मिसिंग। तो करते करते मुझे आज 2 साल 8 महीने हुए हैं ज्ञान में, तो मैं ब्रह्मा कुमारी अम्बाला सेंटर पहुंच गया। वॉक करते करते सुबह चला था कहीं और, पहुंच गया कहीं और, तो फिर वहां से जर्नी स्टार्ट हुई। तो मैंने घर में बताया नहीं कि कहाँ जाता हूँ, बिकॉज सब पूछे हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो मैंने अपना कोर्स किया, दीदी ने बोला कोर्स कर लो, आशा दीदी ने, तो मैंने बोला ठीक है कोर्स कर लेते हैं, कोर्स कर लिया। उसके बाद मुझे समझ में आया कि मेरे सारे लिंकेजेस क्लियर हो गए विद इन 15 डेज। 15 डेज ऐसा कोई डाउट नहीं था जो मेरे मन में कोई शंका समाप्त। तो वही मैं देख रहा था कि अर्जुन का 18वां अध्याय, भगवद्गीता का 18वां अध्याय, अर्जुन वो पूछते हैं भगवान अब क्या, अब तुम्हारी स्थिति क्या है, तो कहता अब मुझे कोई संशय नहीं है, अब मैं आप जैसा कहोगे वैसा करूंगा, और मैं अब गांधी उठाने के लिए तैयार हूं। सो दैट इज व्हाट हैपेंड। तो गांधी उठाया, उसके बाद अपने बच्चों को, पूरी फैमिली को, विद इन 1 month माई होल फैमिली इज इन ज्ञान। मेरी माँ, मेरे 2 बेटे, मेरे ब्रदर, वी हैव इन ज्वाइंट फैमिली, उनकी वाइफ, उनके बच्चे, मेरी बहन, मेरे बहन का बेटा बेंगलोर में रहते हैं बट वो अम्बाला आई तो उसी दौरान में, तो उसको भी कोर्स करा दिया, एंड शी इज ऑल्सो वेरी गुड बीके। तो कहने का मतलब ये नहीं है, मुझे समझ में आया कि सारे लिंकेजेस, सारे डाउट जहां समाप्त होते हैं वो ये घर है। तो एम्पावरमेंट की जहां तक बात आती है, जब दरिया में चलते हैं तो तूफान तो आते ही हैं, अगर तूफान से हम डर जाएं तो तूफान तो रुकेंगे नहीं, तूफान तो अपने समय पर आएगा ही, लेकिन तूफान से बचना कैसे है, वी हैव टू प्लान, प्लान करना पड़ेगा पहले से। इन्फॉर्मेशन मिल गई तो बहुत अच्छी बात है, जो कि मिल जाती है आजकल, अगर नहीं मिली तो देन यू हैव टू फेस इट। तो वही आज की मुरली भी सुबह ऐसी ही है, अगर या तो हमको फेस करना पड़ेगा या तूफान आ जाएगा। और व्यर्थ संकल्प अगर एक भी चल गया हमारा, तो उसकी गति जैसे हमने कितने तीन दिनों में वही सुन रहे कि व्यर्थ संकल्पों की गति अति तीव्र है, इतनी तीव्र है, इतनी तीव्र है कि दे मल्टीप्लाई लाइक अ कैंसर सेल, मेटासिस होती है। तो इसको रोकने के लिए आपने पास कंट्रोलिंग पावर होनी चाहिए, वो पावर नहीं है तो जहाज जैसे चल रहा है, तो जहाज अगर चल रहा है तो लहरों पे चल रहा है, मौसम खराब हो गया, तूफान आ गया। अब आपको दिशा का ज्ञान तो आवश्यक है, सबको होता है, मुझे भी है, लेकिन दिशा का ज्ञान होने के बावजूद भी आपकी नजर किस पर टिकती है? आप तो एक कार्य करते हो निमित्त बन के कि हाँ भाई ये मैंने पढ़ा है, इसके हिसाब से ऐसा एग्जीक्यूट कर देते हैं, फिर भी मन में क्या रहता है? मन में वही चलता है कि ईश्वर जो मैं डिसीजन ले रहा हूं उसमें साथ देना। तो वो साथ के लिए उस ईश्वर को हमेशा हम याद करते हैं, तो ईश्वर को जो है याद करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और आज भी बोला सच्चे मन से याद करो उसको, सच्चे मन से याद करना अति आवश्यक है। सच्चे दिल पर साहेब राजी कहते हैं, बट सच्चे दिल के साथ साथ मेहनत भी करनी पड़ेगी, विश्वास भी करना पड़ेगा, विश्वास के बिना कुछ नहीं होगा। आज सुबह की क्लास में भी आया था अटमोस्ट फेथ, फेथ नहीं है तो कुछ भी नहीं है, वही अर्जुन का हिसाब था। संशय, एक संशय का बीज आपके मरते दम तक आपको छोड़ेगा नहीं, वो आपको ले डूबेगा, और जैसे ही संशय समाप्त आप सशक्त। तो सशक्तिकरण जो है उस सारे चीजों का डाउट जो है उसको समाप्त कर दो।
थैंक यू मनु भाई। कल जब हम मनु भाई से बात कर रहे थे तो उन्होंने मुझे एक बात सुना रहे थे कि दो चीजें शिपिंग सेक्टर में बहुत जरूरी है, एक लाइट हाउस और एक कंपस। और जब जीवन में भी हम समझते हैं दो चीजें बहुत जरूरी है, एक लाइट हाउस जिसे मैं कहती हूं परमात्मा, वो हमारा लाइट हाउस है जो हमारा गाइडिंग फोर्स है, और हमारी ये बहनें जो हमारे कंपस हैं। एग्जैक्टली। सो मैं आदरणीय गिरिजा बहन से अभी ये सवाल रखना चाहती हूं, क्योंकि ये परमात्मा के जो सेवा केंद्र हैं लोधी रोड में, वहां पर डेडिकेटेड हैं, और इनके पास बहुत कॉर्पोरेट से भी भाई बहन अलग अलग तरीके से आते हैं। तो मैं आपसे ये सवाल करना चाहती हूं कि आप उनके कंपास कैसे बनते हैं, उनकी लाइफ को कैसे गाइड करते हैं।
प्रशांति बहन ने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा कि सचमुच जो जर्नी है बहुत सुंदर है, और इसको एम्पावर करना इतना इजी नहीं है, लेकिन जो परमात्मा ने हम सबको ज्ञान दिया है उस ज्ञान के आधार पर हम अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। तो बात सारी ये आती है कि हम दूसरों को किस प्रकार से चलाते हैं, किस प्रकार से, लेकिन हमें ब्रह्मा कुमारीज ने ये सिखाया है, आप ज्ञान से किसी को बोल नहीं सकते, लेकिन आप अपना जीवन से किसी को चला सकते हैं। जैसे कि अभी दीदी बता रही थी नॉट एंड डॉट, सवेरे हम लोग गॉडली वर्शन सुन रहे थे तो मुझे एक बात याद आई थी, जब वो वर्शन सुनते सुनते जिंदगी की, एक समय ऐसा भी आया हम लोग समर्पित हुए थे, बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत सुंदर, जैसे कहते हैं ना कि यात्रा चलती है, ट्रेन चलती है, फ्लाइट चलती है, बसें चलती हैं, रास्ते में कभी कुछ रुकावटें आती हैं, उसी प्रकार से जिंदगी में कुछ ऐसी बातें होती हैं तो लाइफ रुकने लगती है। तो ठीक उसी प्रकार जब हम यहां की लाइफ बहुत सुंदर चल रही थी, अचानक कुछ ऐसी सिचुएशन आई, एकदम ठहरने लगी थी जिंदगी, थोड़ी सी शुरुआत की बात है। और मैंने एक जिंदगी में महसूस किया है, और मैं अभी तक भी वो करती हूं कि जब भी कोई समस्या, जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, तो जैसे आप लोगों का यहाँ मॉर्निंग मेडिटेशन 4 बजे का होता है, आप लोग कर रहे हैं, तो हम लोग तो बचपन से ही, जब से हम ज्ञान में चले हैं तब से कर रहे हैं, और मैं अमृत वेले 4 बजे उठ करके जो भी बात है वो परमात्मा के सामने रखती हूँ मैं, और मैं कुछ संकल्प नहीं करती, मैं कुछ बोलती नहीं हूँ, और मैं परमात्मा से ये कहती हूँ कि देखा जो जिंदगी आपकी है, ये जर्नी आपके साथ मेरी चल रही है, अब आपको जो सोचना है मेरे लिए, जो करना है, बस मेरे को प्रेरणा देते जाओ और मैं करती जाऊं। तो वो एक सवेरे मेरे को थॉट मन में आया, परमात्मा की तरफ से शायद एक प्रेरणा रहे, एक थॉट रहे कि आप आगे चलते चलो, पीछे मुड़ के मत देखो, आपने पैर, जिंदगी का पैर आगे रखा है तो पीछे मुड़ करके देखना ही नहीं है, न रखना है। बस एक थॉट जो चल रही है वही मुझे थॉट शक्ति देती है, और मैं अपनी जिंदगी से ही, जीवन से ही कोशिश हमारी रहती है कि हम सही तरीके से चलें, जो परमात्मा के डायरेक्शन अनुसार चलें, तो उसी प्रेरणा के द्वारा कि दूसरों को भी प्रेरणा मिल जाती है।
बहुत सुंदर ये भावना रही कि किस तरह परमात्मा का ज्ञान हमारे लिए कंपास बनता है और ये हमें नेविगेट करता है, क्योंकि आज आप इवन मीरा दीदी से भी, गिरिजा बहन से भी, हमारे मनु भाई से भी सुन रहे थे कि हमारे गॉडली वर्शंस होते हैं और यही हम सभी ब्रह्मा कुमार कुमारियों के सोर्स ऑफ नॉलेज हैं, जिसके द्वारा आप जो भी यहां सुन रहे हैं, जिन भी आप स्पीकर्स को सुनेंगे, हम सभी का आधार यही वर्शंस हैं। और जैसे स्कूल में स्टूडेंट होते हैं, टीचर एक होता है लेकिन स्टूडेंट तो अनेक होते हैं, जिसकी जैसी ग्रैस्पिंग पावर, जैसा दृष्टिकोण, वो उसको वैसे ही लेकर चलता है। उसी प्रकार अनेक प्रकारों से यहां पर समझाया जाता है। अब बात उठती है यात्रा की, और वो भी स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट की, तो मैं हरिपाल भाई जी से एक क्वेश्चन करना चाहूंगी कि ये जो हमारे जीवन की स्थूल यात्रा है, क्योंकि आप एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से बिलोंग करते हैं जो एविएशन सेक्टर से है, तो ये जो हमारी स्थूल यात्रा है और जीवन की यात्रा है, इनमें क्या अंतर दिखाई देता है, क्योंकि आप तो दोनों ही यात्राएं कर रहे हैं। हरिपाल भाई 1990 में ब्रह्मा कुमारी इसके साथ जुड़े हैं सपरिवार, इनकी वाइफ और इनके बेटे भी इसी नॉलेज में चल रहे हैं, और इनका सौभाग्य है ऐसा कहूंगी कि ब्रह्मा कुमारी इसके फर्स्ट स्पोक पर्सन हमारे आदरणीय जगदीश भाई जी, जिनके हम आप हमारे लिटरेचर में अनेक किताबें देंगे, उनके अंग संग रहने का इनको बड़ा सौभाग्य मिला। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ये यात्रा आपको कैसे लग रही है?
ओम शांति। स्पिरिचुअल यात्रा में तो जब चले थे उस समय ऑब्स्टेकल्स काफी आए, लेकिन स्पिरिचुअल नॉलेज से और दैवी परिवार के भाई बहनों से, जो सीनियर भाई बहनों की मदद से, वो ऑब्स्टेकल्स तो पार हो गए और अभी भी आगे ही चलते जा रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। और स्थूल से अगर मैं यात्रा की बात करता हूँ, कई बार ट्रैवल तो सभी करते हैं, तो उसके लिए जब भी ट्रैवल करते हैं, यहाँ भी आए हैं आप लोग, तो ट्रैवल में कुछ सामान का या जो भी आप पैकिंग करते हैं उसमें आपको ध्यान में रखते हुए कि हम कहाँ जा रहे हैं, उस हिसाब से पैकिंग करते हैं। वो कौन सा सामान लेके जाना है, किसकी जरूरत है, वही लेके जाते हैं। जैसे ट्रैवल, एयर ट्रैवल भी करते हैं, तो पैकिंग करते वक्त हमारा ध्यान बहुत जरूरी है। कई बार हम ऐसे ही सामान रख देते हैं, अटैची में ये भी रख दो, मतलब जो अनवांटेड सामान है वो भी हम रख देते हैं। तो कई बार ट्रैवल में जब हम जाते हैं, कई बार रिस्ट्रिक्टेड आइटम होती हैं, जो भी रिस्ट्रिक्टेड आइटम होती है भाई, कई बार हमारे ध्यान से उतर जाता है, वो रिस्ट्रिक्टेड आइटम हम अपने बैगेज में रख देते हैं, लेकिन वो आगे, क्योंकि हम आगे बोर्डिंग कार्ड लेके आगे निकल जाते हैं, रिस्ट्रिक्टेड आइटम कई बार ऐसा होता है कि रिस्ट्रिक्टेड आइटम एयरपोर्ट पे रोक ली जाती है और आपको मालूम नहीं चलता, आप एयरक्राफ्ट पे चढ़ जाते हैं, आपका सामान उसमें नहीं चढ़ता, लेकिन डेस्टिनेशन पे जाकर पता चलता है कि आपका सामान तो प्रीवियस डेस्टिनेशन ओरिजिन पे रह गया है, क्योंकि उसमें रिस्ट्रिक्टेड आइटम्स थी। तो इसलिए हमारा ध्यान रखना हमें जरूरी है कि कोई भी रिस्ट्रिक्टेड आइटम जो भी है, सिमिलरली स्पिरिचुअल यात्रा में भी जो भी रिस्ट्रिक्टेड आइटम है, जो आगे हमें जाना है, मतलब स्वर्ग के लिए जो एंट्री करनी है हमें, वो उसमें भी रिस्ट्रिक्टेड आइटम हमें यहीं छोड़ के जानी है, आगे हम कुछ लेके जा नहीं सकते। और भाई साहब के साथ का मैं एक जस्ट एक फनी वो है, तो मैं उनका कुछ आर्टिकल जैसे वो लिखते थे, तो मैं उसमें, मुझे टाइप आता था तो मैंने टाइप करना शुरू करता, तो वो हिंदी की टाइप मैं करता था, इंग्लिश भी करता था, तो हिंदी में कई बार कुछ अक्षर होते हैं जिसमें डॉट कुछ लगाने पड़ते हैं, कुछ अक्षर ऐसे तो डॉट लगाते हैं, तो एक्चुअली हमारे जो जगदीश भाई साहब थे वो बहुत ही, मतलब बहुत ही परफेक्शन चाहते थे, हर चीज में परफेक्शन चाहते थे कि ये परफेक्ट होनी चाहिए कोई भी, एक डॉट की भी गलती वो एक्सेप्ट नहीं करते थे कि एक डॉट भी लगना है तो उसको दोबारा से प्रिंट करना है। तो उन्होंने मुझे बुलाया, कहते यार आप डॉट नहीं लगाते, हा के नीचे, डा के नीचे, कई बार डॉट नहीं लगता है, अब ध्यान भी नहीं रहता है, डॉट नहीं लगाते हैं। तो फिर मैंने कहा ठीक है भाई साहब, उसके बाद लगाना शुरू किया, मैं हर जगह डॉट लगाना शुरू कर दिए। फिर उन्होंने बुलाया, कहते हैं कि आप यार आप डॉट ज्यादा लगाने शुरू कर दिए, जहां जरूरत है वहीं डॉट लगाना है आपको। तो बस थैंक यू।
हमारे जीवन में भी ऐसा होता है कि जहां डॉट लगाना होता है वहां हम लगा नहीं पाते, और जब लगाना शुरू करते हैं तो हर जगह लगाते ही जाते हैं। अब मैं आप सभी से भी पूछना चाहूंगी जो यहाँ पर ऑडियंस में बैठे हैं। बड़ी सुंदर बात अभी हरिपाल भाई जी कह रहे थे कि लाइफ में कुछ ऐसी चीजें रिस्ट्रिक्टेड होती हैं, आप लोग भी ट्रैवल करते हैं, तो आपको क्या लगता है हमारे लाइफ में किन चीजों का रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए? स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, यस, नेगेटिव नोट्स, ओके, नेक्स्ट, यस, हां जी, किसी का दिल दुखाना, हर्टिंग अदर्स एंड हर्टिंग आवर सेल्फ इज ओके, नो, ओके, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, ओके, और कुछ? हां जी, ओवर थिंकिंग, ओके, फाइन, यस, बहुत ज्यादा बैगेजेस लेके चलते हैं, हमारा वेट तो पता नहीं 20 केजी मिलता है, ट्रैवल करते हैं 7 किलो हाथ में मिलता है, तो कभी हंसते हुए कहते हैं आध्यात्मिकता में तो केवल 7 ही किलो मिलता है, 7 गुण हमारे साथ जाएंगे और कुछ नहीं जाएगा, यस दीदी, ऐसा ही 7 गुण हमारे साथ जाएगा। तो मैं अभी चाहूंगी हमारे मंच पे जो बैठे हैं, विशेषकर राकेश भाई से मैं ये सवाल करना चाहती हूँ, आपके हिसाब से हमारे जीवन में कौन कौन सी चीजों का रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए, क्योंकि आप होटल इंडस्ट्री से हैं और होटल संभालते हुए आप जानते हैं एक मोटिव हमारा रहता है, अतिथि देवो भव, और जब अतिथि घर आते हैं तो वैरायटी के आते हैं, बहुत वैरायटी के अतिथि आते हैं, कई तो देवता होते हैं तो कई महानुभाव होते हैं, तो ऐसे में कौन सी बातों का रिस्ट्रिक्शन हमें रखना पड़ता अपने अंदर?
नमस्ते एंड ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। देखिए, मैं एक होटल इंडस्ट्रीज को डील करता हूं, तो वहां पर जैसे बहन जी ने कहा है कि वहां पर किस तरह की समस्याएं आती हैं, तो वहां पर ये बात सही है कि जो वहां पर अलग अलग तरह के लोग आते हैं और कुछ लोग उस चीज को जो आप उनको दे रहे हैं, आदर सत्कार कर रहे हैं, उसको अच्छा मानते हैं, और कुछ लोग उसमें ऐसे भी होते हैं जो जरा जरा सी बात पे बहुत उधम और बहुत बवंडर खड़ा कर देते हैं। तो उसमें यही है कि हमने अपने लोगों को समझाया है कि भाई ये हमारे अतिथि हैं, इनका हमको स्वागत करना है और इनकी किसी भी बात को बुरा नहीं मानना है, और अपने को सहनशीलता रखते हुए उनको जवाब देना है, और उनको ज्यादा कुछ यदि वाद विवाद बढ़ता है तो उसमें अपनी गलती मान के क्षमा मांग लेना है। तो मैं समझता हूं इसमें कि सहनशीलता और क्षमा, उनको उनसे मांग लेना, तो उससे भी वो लोग शांत हो जाते हैं, और इस तरीके से हमारी उसकी जर्नी आगे चलती रहती है, और इस तरीके के जो वाद विवाद की स्थिति है वो भी टल जाती है। धन्यवाद, थैंक यू।
सहनशीलता तो बहुत सुंदर गुण है राकेश भाई, लेकिन आज इस मॉडर्न लाइफ में मैं जब भी यूथ से मिलती हूँ तो एक शब्द सुनती हूँ, और मैं यहाँ सभी बैठे मंचासन से पूछना चाहती हूँ और ऑडियंस में भी, क्षमा करना आसान है। There's a beautiful silence in the audience. Spirituality में आने के बाद, मतलब आने के बाद, तब तक मुश्किल है, yes? तो अपने से ज्यादा दूसरे को महत्व देंगे, okay, ये बड़ा अच्छा थी, बैठिएगा, थैंक यू वेरी मच। तो मैं आदरणीय मीरा दीदी से पूछना चाहूंगी, क्योंकि उनके व्यक्तित्व को मैं पिछले 20 साल से ऊपर से देख रही हूं, बात होती है एक घंटे के बाद कहती रिपीट नहीं कर, छोड़ दे, एंड शी इज लाइक छोड़ दे, एंड दैट इज द रीजन ऑफ अ ब्यूटिफुल स्माइल ऑलवेज। तो मैं दीदी से, क्योंकि मैंने उनके जीवन में कई ऐसे दृश्य देखे हैं जहां यूथ होते हुए हमें लगता था कैसे भूल जाए, कैसे छोड़ दें, और वो छोड़ के हमें दिखाते थे। तो मैं दीदी से पूछना चाहती हूँ, ये क्षमा का गुण आपने अपने अंदर कैसे धारण किया, क्योंकि हमारे लिए तो ये मुश्किल लग रहा है।
ओम शांति। मैं हमारे समक्ष ये बात रखती हूं कि परमपिता परमात्मा क्षमा के सागर हैं और हम उनकी संतान हैं, तो हमें भी क्षमा स्वरूप बनना बहुत आवश्यक है। वैसे भी देखा जाए तो ये हमारे सुंदर जीवन की वैल्यू है, काइंडनेस एंड कंपैशन। अगर हम इस वैल्यू को महत्व देते हैं, इस गुण को, दया और करुणा को महत्व हम देते हैं, तो हम किसी को भी क्षमा जरूर देंगे। और जो क्षमा किसी को देता है वो वीर कहा जाता है। भारतीय संस्कृति में कहा गया है कि क्षमा वीरस्य भूषणम्। क्षमा देने वाला वो वीर है, वो हिम्मतवान है। और जब हम किसी को क्षमा देते हैं तो वो एक ऐसी बात है कि हमने अपने आप को बहुत लाइट किया, सामने वाली व्यक्ति भी लाइट हो जाती है। और अगर हम किसी को क्षमा नहीं देते हैं तो आप ऐसा ही समझिए कि आपने अपना मकान, जो आप उसके ओनर है, आपने किसी को रेंट पे वो मकान दिया है और वो व्यक्ति आपको, वो रहता है उसमें परंतु वो रेंट तो दे ही नहीं रहा है, तो नुकसान है। जब क्षमा नहीं देते हैं तो वो व्यक्ति हमारे मन और बुद्धि में बैठ जाता है और बार बार हमें वो डिस्टर्ब करेगा। हम योग में भी बैठेंगे, परमात्मा की याद में भी बैठेंगे, तब भी वो हमें मन और बुद्धि के द्वारा अपसेट करेगा, डिस्टर्ब करेगा, योग हमारा लगने नहीं देगा। इसलिए हमें ये मन में सोच करके क्षमा देनी है कि यह विश्व एक बड़ा ड्रामा है जिसके अंदर, इस विश्व के स्टेज के ऊपर हम सब पार्टधारी हैं, हम सब एक्टर हैं। रियल लाइफ में हम एक्टर हैं और हर एक अपनी एक्टिंग कर रहा है। और सामने वाले ने कुछ किया जो मुझे ऐसे महसूस हुआ कि इसने मिस्टेक किया है, किया नहीं किया वो एक अलग क्वेश्चन है, परंतु अगर मुझे ऐसे लग रहा है तो मुझे अपने आप को समझाना चाहिए कि हर एक एक्टर का अपना अपना स्वभाव और संस्कार है, हमारा अलग है, उनका अलग है और उसका अपना है। तो मेरे कंट्रोल में कोई उसका स्वभाव संस्कार नहीं है, तो कम से कम मैं ये तो ना सोचूं कि इसका कुछ हम नुकसान कर दे, बिल्कुल नहीं। और इसीलिए हमें गुड वाइब्रेशंस उसको देना है जिससे हमारे रिलेशन फिर से उनके साथ बहुत अच्छे भी हो जाएंगे और हमारे मन के अंदर, बुद्धि के अंदर वो ऑक्यूपाई नहीं रहेगा, इसलिए भी आवश्यक है। ओम शांति।
तो दीदी आपका कहना है कि हमें अपने मन में फ्री ऑफ चार्ज किसी को नहीं बिठाना, ऐसा ही कहें? फ्री ऑफ चार्ज हमें अपने मन में किसी को रेंट पे नहीं बिठाना है, अगर बिठा दिया तो वो तो मालिक बन जाएगा, नुकसान है हमारा। और प्रैक्टिकल लाइफ में देखा जाता है कि जब हम कॉर्पोरेट्स में होते हैं या घर गृहस्थी में होते हैं तो हम तो लोगों के साथ डील कर रहे होते हैं, लोगों के साथ साथ रहते हैं, और हमारे पास कई बार ऐसी जिम्मेवारी आती है जहां हमें दूसरों को सिखाना भी पड़ता है। अब वो सीखने आए हैं, हमें सिखाना है। समझो किसी को साइकिल सिखाने के लिए आपको कहा जाए कि आप इस व्यक्ति को साइकिल सिखाइए, अब आप तो बहुत ऑनेस्ट हैं, बहुत सिंसियर हैं, आप बहुत तरीके से उनको साइकिल सिखाने की कोशिश करा रहे हैं, रोज उनको सिखा रहे हैं, रोज उनको सिखा रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिन, लेकिन वो व्यक्ति पैडल भी नहीं मार पा रहा, हाँ, हैंडल भी सीधा रख नहीं पा रहा, तो ऐसे समय पर आपके अंदर कौन सी भावना आएगी? क्या कहेंगे दीपिका भाई, क्योंकि आप तो अपनी फील्ड में ऐसे देखते होंगे?
आई थिंक आपको एक तो सहानुभूति चाहिए, बिकॉज यू फील कि शायद उसमें क्षमता नहीं है, तो आई थिंक खुद को करना पड़ता है, फिर वो सीख लेगा। अगर आप कर दिखाओगे, बोलने से नहीं होता, खुद को कर दिखाना पड़ता है, तभी आदमी सीख पाता है स्टेप बाय स्टेप।
और अगर आपने उनको चला के दिखाया, आप चला के दिखा रहे हो उन्हें, और वो उसे भी कॉपी नहीं कर पा रहे,
तो फिर कई बार होता है कि उसके पास उसकी पावर नहीं होती है, तो आप उसको फिर माने उसके जैसे, अगर कोई फील्ड में उसको एक पार्ट में ही इज वेरी कॉम्पिटेंट, एक में नहीं है, तो आप उसको वहां पर कोचिंग गाइडेंस, ताकि वो उस लेवल तक आ जाए जहां वो उसको बैलेंस कर पाए।
जी, तो मैं अभी एक से सुन रही थी और मुझे कोई आते हुए एक बात बड़ी सुंदर एक्सपीरियंस सुना रहे थे, कहते दीदी बहुत मेहनत करते हैं, उसे सिखाए करके दिखाते हैं, सिखाते हैं, सब लोगों ने कहना शुरू कर दिया ये आपका फेवरेट है, जबकि एक्चुअली फेवरिज्म वाली कोई बात नहीं है, लेकिन हम उन्हें सिखा रहे हैं। क्यों सिखा रहे हैं? ताकि वो अपना स्तर, और ये तो शुभ भावना कहलाई जाएगी, शुभ भावना कहेंगे आप इसे, लेकिन प्रोफेशनल फ्रंट पे हमारे पास एक टाइम कॉन्स्टेंट होता है, जिसके कारण हम ये नहीं कर पाते। और हमारे जर्नी ऑफ एम्पावरमेंट में जो वो मेरे सामने रख रहे थे बात, वो कह रहे थे कि दीदी फिर ऐसा होता है, हम अपने मन को सशक्त बनाते बनाते उस व्यक्ति के कारण लूज कर जाते हैं और हम हार जाते हैं, और हार कर उसको एक लेबल दे देते हैं कि ये शायद सीखना ही
नहीं, वैसे नहीं करते, बाबा के ज्ञान के बाद में कभी
नहीं कर सकते नहीं। और अगर हमने कर दिया तो क्या होगा?
हाँ, पर फिर उसको वापस अपने माइंड में जैसे नॉट एंड डॉट कर दें, ताकि ये दोबारा रिपीट ना हो।
नहीं हो। आकाश भाई आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? आप तो तीन तीन फील्ड से बिलोंग करते हैं।
नहीं, मैं तो बहुत टाइम सुन रहा था, बहुत सारे चीजें हैं जो कि हम बोलना चाहेंगे इसके बारे में, लेकिन एक चीज मुझे लगता है कि एम्पायर होने के लिए या फिर सभी को आगे बढ़ने के लिए, कभी कभी क्या होता है कि जो हम में से बहुत सारे हैं यहां पे जो है, मैं सोचता हूं वो साधारण व्यक्ति के स्तर से थोड़ा आगे जा चुके हैं, तभी तो यहां पे सब हैं। लेकिन दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि समझते हैं कि दुनिया का बोझ हमारे ऊपर है, लेकिन हम पूरी यूनिवर्स में, मिल्की वे गैलेक्सी में, एक छोटे से अर्थ में, छोटी सी जगह पे, बहुत छोटा सा एंटिटी लेके खड़े हुए हैं, लेकिन हमें लगता है कि हमारे ऊपर सब कुछ है, और हमारे अंदर इतने अहंकार है और बाकी इतने सारे चीजें भरा है, जिसकी वजह से कि पॉजिटिवनेस जो है जितना आना चाहिए वो नहीं आ पाता है। मुझे आज के समय पर लगता है कि हमें रोल मॉडल्स की बहुत सारे जरूरत है दुनिया में, हर फील्ड्स में रोल मॉडल्स ही, जो रोल मॉडल्स को देख के यूथ और स्टूडेंट्स, जो भी फ्यूचर है हमारे, वो रोल मॉडल्स को देख के ही आगे आएंगे। जो कोई देखता है कि कोई बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रहा है तेंदुलकर, तो हम तेंदुलकर बनेंगे, या फिर कोई बहुत अच्छा एक्टिंग कर रहा है, स्टार है, तो हम स्टार बनेंगे। लेकिन अगर हम रोल मॉडल्स ज्यादा से ज्यादा बनाएं, जिसके लिए हम सब यहां पे इकट्ठा हुए हैं, और तभी मैं सोचता हूं कि जिस स्तर को हम जाना चाहते हैं या फिर विश्व को जिस स्तर पे लेना चाहते हैं, तभी वो संभव हो पाएगा।
तो आपका कहना है कि इस एम्पावरमेंट की यात्रा में एक रोल मॉडल हमारा होना चाहिए।
जरूर, रोल मॉडल बनाना चाहिए दुनिया,
बनाना चाहिए। तो मैं अपना रोल मॉडल किसे बनाऊं, उसकी क्या क्वालिटी मैं सेट करूं? जैसे आपने कहा, आज के यंगस्टर्स मीडिया को देखते हैं या कोई अचीवमेंट्स को देखकर उनको रोल मॉडल्स बना लेते हैं, एंड यू नो व्हाट हैपेंस, अगर उन रोल मॉडल से एक गलती होती है तो वो उस गलती को रिपीट करते हैं और उस गलती को ही अपने लाइफ में रिपीट करके वीकनेस बना लेते हैं.
ट्रू. मैं exactly. उस के रोल मॉडल के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मैं स्पिरिचुअल रोल मॉडल्स के बारे में बोल रहा हूँ जिसे देख के स्पिरिचुअली एम्पायर होने के लिए यूथ आगे बढ़े.
हाँ.
और विश्व को एक जो भी आज सारा विश्व में हम देख रहे हैं कि जो भी प्रॉब्लम्स है, पॉवर्टी हो, वार हो, जो भी हो रहा है, वो हो रहा है ज्ञान के अभाव से, कंपैशन के अभाव से, तो उसके लिए ही हो रहा है. तो हम
आई लाइक टू आस्क यू मीन्स कैरियर बेस्ड रोल मॉडल नहीं चाहिए.
करियर बेस्ड नहीं, जो हमें
स्पिरिचुअल वैल्यू बेस्ड रोल मॉडल चाहिए,
जो हमें एक अच्छा इंसान बनाने के लिए प्रेरित करे.
एग्जैक्टली,
ऐसा रोल मॉडल.
सो टेकिंग दिस जर्नी मोर फॉरवर्ड, आई लाइक टू आस्क ऑल ऑफ यू, ये स्पिरिचुअल रोल मॉडल हम कैसा बनाए? हाँ गिरिजा बेन, वो कौन होना चाहिए और कैसा होना चाहिए? बिकॉज हमें तो बहुत सारे कैरियर बेस्ड रोल मॉडल्स मिले हैं बचपन से, ऐसा बनना ऐसा बनना, और घरों में ऐसा कहते थे बड़े भाई जैसा बनना, बड़े बहन जैसा बनना, मम्मी जैसा बनना, पापा जैसा बनना. और जब हम अपने घर वालों के साथ, जैसे ये समय आया था जब घर के अंदर ही हम बैठे थे, उन्हीं घर वालों के साथ हम बैठे थे तो उनकी कमी कमजोरियां नजर आ जाती हैं, और फिर हम ये मन में सोचते हैं हम इन जैसा बनना चाहते थे, ये तो ऐसे हैं. दैट्स व्हाट दे स्टार्टेड सेइंग, ये तो ऐसे हैं. एग्जैक्टली. तो वो जो रोल मॉडल है वो कैसा होना चाहिए? व्हाट टाइप ऑफ स्पिरिचुअल एम्बॉडीमेंट ही शुड बी और शी शुड बी?
ओम शांति. रोल मॉडल के लिए अभी जैसे आप बता रहे थे कि बाहर तो किसी को हम बना भी नहीं सकते, लेकिन ये है कि हम ब्रह्मा कुमारीज में हम आते हैं तो जब हम लोग 7 डेज का कोर्स करते हैं, फिर उसके बाद जो हम मुरली कहते हैं, तो मुरली जब हम लोग सुनते हैं तो मुरली में हमेशा परमात्मा ने कहा कि फॉलो फादर, माना कि जो परफेक्ट है हमें उनको ही फॉलो करना है, उनको ही हमें रोल मॉडल बनाना है. इस दुनिया में परफेक्ट तो मैं समझती हूं कि कोई भी नहीं है, लेकिन काफी हद तक जो मैंने अपने जीवन में देखा है, जो हमारे ब्रह्मा कुमारीज के जो सीनियर्स हैं उनको हमने बहुत बारी देखा है कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स उनके सामने आती थी, लेकिन बिल्कुल वो ऐसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे पता ही नहीं चलेगा, ऐसा लगता कि जैसे मक्खन से बाल निकलता है. हमने नजदीक से दादी गुलजार जी को देखा जो हमारे फॉर्मर चीफ रहे हैं, छोटी छोटी बातों पर उन्होंने इतना अटेंशन दिलाया. मुझे एक छोटी सी बात याद आती है, जब जैसे आप लोग भी माउंट आबू आए, मैं भी दिल्ली से माउंट आबू आ रही थी, ट्रेन से जैसे राजधानी से मैं उतरी और मैं गाड़ी में बैठी तो मैं पीछे अकेली थी, ड्राइवर आगे बैठा हुआ था और मेरे हाथ में पर्स था, मोबाइल था. और जैसे मैं, हमारा नीचे शांतिवन में इंद्रप्रस्थ है भवन, जैसे मैं उतरी तो मेरे हाथ में मोबाइल लिया और मैं जल्दी उतरी क्योंकि ट्रेन लेट होगी तो मुझे तैयार होकर के जाना है करके, वो बैग मेरा रह गया और उस बैग में सब कुछ था, टिकट, वापसी का टिकट, मनी, सब कुछ था, वो रह गया. और जो ड्राइवर जो आया था वो बाहर का ड्राइवर था, हमारा नहीं था, ब्रह्मा कुमारीज का नहीं था. तो मैंने कोशिश की ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में मेरे वो मिल जाए बैग कैसे भी करके, लेकिन अल्टीमेटली मुझे वो मिला नहीं है और सब कुछ उसमें था. और थोड़ा सा मैं उदास तो हो गई नेचुरली, थोड़ा सा तो मन में संकट चला मेरे को. और मैं स्नान वगैरह करके मैं दादी जी के कमरे में, दादी जी कॉटेज है वहां शुरू, ये मैं समझती हूँ कि 10-12 साल पहले की बात है ये. और मैं वहां गई तो मेरा थोड़ा सा चेहरा ऐसा था, सचमुच आप बिलीव नहीं करेंगे, तुरंत दादी जी ने मुझे पूछा आप मधुबन आए हो, माउंट आबू आए हो, चेहरा ऐसा क्यों बनाया, क्या हो गया? मैंने कहा कि दादी ऐसे ऐसे हो गया. तो तो तुरंत मेरे को सीन याद आती है, तुरंत दादी जी ने कहा जाने दो ना, इतना ही बोला जाने दो, खत्म करो उस बात को। जैसे आज मुरली में कहा था डॉट नॉट एंड डॉट, मुझे नॉट मीन्स, जैसे अभी दो तीन बार चर्चा हुई तो मैं उस बात को क्लियर कर रही हूं, नॉट मीन्स जो मुझे नहीं करना है वो मुझे नहीं करना है, और डॉट मीन्स फुल स्टॉप लगाना। तो दादी जी ने तुरंत बोला फुल स्टॉप लगा दो। मैंने कहा दादी फुल स्टॉप तो मैं लगा दूंगी, अब हमारी एक एज ऐसी थी ना, हम दादी के साथ ही बोलने लगे थे। दादी ठीक है दीदी, जाने देती हूँ, फुल स्टॉप लगा दूंगी, लेकिन आगे का, कहता उसी में ही सारा समाया हुआ है पॉइंट में। तो सचमुच दादी जी को मैंने देखा, और तुरंत दादी जी ने मेरा टिकट बनवा दिया, मेरे को हाथ में पैसे दिया, और जो जो मुझे चाहिए अपने आप सारा, बहन को बोला कि इस बहन को जो जो चाहिए आप उनको दो। एक बार भी दादी जी ने मुझे ये नहीं कहा कि आप अपने बैग को संभाल नहीं सकती, आप अपने आप को संभाल नहीं सकते। हम छोटी छोटी बातें होती हैं, ग्लास नीचे गिरता है टूट जाता है तो हम बोलते हैं क्या हुआ, ध्यान नहीं दे सकते आप, तुरंत हम बोल देते हैं। लेकिन इतनी बड़ी बात थी, दादी जी ने बिल्कुल फुल स्टॉप लगा दिया। तो मैं कई बारी वो सीन याद करती हूँ, कोई भी मेरे सामने बात आती है तो मैं इस चीज को, दादी जी की बात को याद करती हूँ, जाने दो ना, खत्म करो बात को, फुल स्टॉप लगाओ, आगे बढ़ो। तो मेरे लिए ऐसे तो बहुत सारे दादियों का भी एक्सपीरियंस है, लेकिन टाइम की सीमा है, तो मैं दादी गुलजार जी को, दादी प्रकाशमणि जी को, दादी जानकी जी को, और इनसे बढ़कर जो हमारे फाउंडिंग फादर प्रजापिता ब्रह्मा मम्मा, जिनको हमने इन दोनों को देखा नहीं है, लेकिन उनके बारे में इतनी बातें हमने सुनी, इतनी बातें सुनी, वो बात मन में छप चुकी है कि मुझे इन जैसा बनना है, और इन्हीं लोगों को ही मुझे रोल मॉडल बनाना है।
जैसे अभी गिरिजा बहन जी सुना रहे थे, ब्रह्मा कुमारी ये जो नाम इस इंस्टीट्यूशन का है, ये इंस्टीट्यूशन जो हमारे फाउंडिंग फादर प्रजापिता ब्रह्मा, जो हम सभी के लिए एक रोल मॉडल रहे हैं, और ये बड़ा सौभाग्य हम समझते हैं कि हम मीरा दीदी के आंखों से उन्हें देखते हैं, क्योंकि दीदी को उनके साथ रहने का, उनके साथ बहुत सारे अनुभव उन्होंने सजोए हैं। तो मैं मीरा दीदी से पूछना चाहूंगी ये बात, क्योंकि इस समय आप जानते हैं ब्रह्मा कुमारी 140 कंट्रीज से ऊपर ब्रांचेस हैं, और जो यहाँ के स्टूडेंट्स हैं उन्हें हम ब्रह्मा कुमार और कुमारी कहते हैं, ब्रह्मा कुमार और कुमारी, और इन सभी का एक ही लक्ष्य है, टू बिकम लाइक द फाउंडिंग फादर प्रजा पिता ब्रह्मा। तो आखिर ये जो 140 देशों के इतने सारे स्टूडेंट्स ब्रह्मा बाबा जैसा बनना चाहते हैं, आपने उन्हें देखा है दीदी, तो उनकी कौन सी क्वालिटीज है, व्हाट वर द स्पिरिचुअल पर्सनालिटी ही हैड दैट वी हैव टू फॉलो इन आवर लाइफ, बिकॉज आज इतने देशों के देश मेंबर्स उन्हें देख रहे हैं, आज ब्रह्मा कुमारी को अनेक प्लेटफॉर्म्स में आप सब देखते हैं, और हमारे सक्सेस के पीछे हमारे इन्हीं का हाथ है, परमात्मा के द्वारा दिए गए ज्ञान और इनके द्वारा दिए गए मार्गदर्शन। तो आपने तो उन्हें साक्षात देखा है, तो क्या आप हमें क्लियर करेंगे दीदी, ये स्पिरिचुअल मॉडल कैसा हो सकता है, कीपिंग ब्रह्मा बाबा इन फ्रंट ऑफ यू?
ओम शांति। 1963 में, आज से 61 वर्ष पहले, मैं उनको मिली। हम प्यार से बाबा और मम्मा उनको कहते हैं, तो उनका चेहरा देखा फर्स्ट टाइम, तो मुझे अनुभव हुआ कि बहुत डिवाइन है और बहुत तेजस्वी और ओजस्वी चेहरा लग रहा था। बाबा तो एकदम स्ट्रेट ऐसे ही बैठते थे, मम्मा भी, और उनकी दृष्टि से एक दया करुणा यह जैसे कि बहता था झरना।
दीदी एक सेकेंड है, मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि दीदी जैसे पर्सनिफाई कर रही हैं कि हमारे नेत्रों से भी करुणा दया आप सब नोट कीजिएगा, क्योंकि हमें भी ऐसी एक स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी बनानी है अपनी जर्नी में, तो लेट अस नोट डाउन दीज पॉइंट्स।
तो ये अनुभव होता था कि जो भी मनुष्य आत्माएं उनके समक्ष आते थे तो उनका कनेक्शन जो है वो परमपिता परमात्मा सुप्रीम के साथ, जो सर्वशक्तिमान है, उनके साथ उनका कनेक्शन हो, ताकि आने वाले को शांति, सुख, प्रेम, आनंद, पवित्रता, शक्ति और ज्ञान प्राप्त हो और उन सभी को मैसेज ये मिले और सभी संदेशवाहक बनकर के औरों को भी ये मैसेज दे, ताकि हमें जो शांति और सुख मिला है, प्राप्त हुआ है, वो औरों को भी वो प्राप्त हो। और उनको देखते थे इनकी स्पष्ट वाणी, जो भी किसी को समझाते थे तो बहुत प्यार से समझाते थे और छोटी उम्र वालों के साथ वो वैसे हो जाते थे, माना उनको भी कभी ये फील नहीं होता था, कभी भी भारीपन हमें नहीं लगता था, इतने लाइट थे और इतने लविंग थे। सबसे ज्यादा वाइब्रेशंस लविंग का आता था। मैं मेरा खुद का एक एग्जाम्पल सुनाती हूं कि पांडव भवन में मैं आई 1963 में, और मुंबई के अंदर थोड़ी गर्मी थी, मई मास था, छुट्टियों के दिन थे कॉलेज में, और यहां पर आए तो ठंडी थी उस समय, क्योंकि अभी ये होटल्स सारी जो बनी है वो उस समय नहीं थी, बहुत और ज्यादा हरियाली थी और ठंडक भी होती थी मई मास में। तो थोड़ा सा मुझे बुखार आया और मैं अपने कमरे में थी, तो मॉर्निंग क्लास जो होता है 7 to 8 और 6:30 से मेडिटेशन होता है, तो उसमें मैं पहुंची नहीं, डेली में फर्स्ट रो में बैठती थी उसमें। तो जिस दिन मैं नहीं पहुंची तो डॉक्टर निर्मला दीदी के साथ हम आए थे, तो दीदी को बाबा ने तुरंत मुरली के बाद 8 o'clock जब प्रवचन पूरा हुआ, ज्ञान मुरली जो थी, तो मुरली के बाद उनको पूछा कि ये बच्ची आज आई नहीं है, तो दीदी ने कहा कि हाँ उसको बुखार है इसलिए वो नहीं आई है। तो बाबा ने थोड़ी देर के अंदर, एक दादी जी थे, संतरी दादी जी उनका नाम था, उनको बाबा के जो बगीचे, माना पांडव भवन में जो पपीता का जो वृक्ष होता था उसमें से एक पपीता तुड़वाया और दादी जी को कहा कि ये बच्ची मीरा को जाकर के देकर के आओ, बच्ची ने सुबह से कुछ खाया नहीं होगा तो ये देकर के आओ। और जब वो दादी जी मेरे कमरे में आए और मुझे ये दिया कि बाबा ने ऐसे ऐसे कहा है कि आपने सुबह से कुछ खाया नहीं होगा और ये पपीता खाइए, तो मैं तो एकदम आश्चर्यचकित हो गई कि इतने सारे क्लास में बैठे हैं और बाबा ने, मैं तो इतनी छोटी एज की हूं और बाबा ने मेरे लिए इतना प्यार से बाबा के बगीचे का पपीता वो तुड़वा करके भेजा, कमाल है ये तो, बाबा का इतना मेरे पर अटेंशन, तो ये क्या है, ये बहुत 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 लविंग नेचर बाबा का था और बहुत बहुत केयरिंग नेचर का था। कभी भी उनको देखते थे तो लगता था कि ये सारी दुनिया से बिल्कुल दोनों ही न्यारे हैं, बल हमारे से बात कर रहे थे, रूहान जिसको हम कहते हैं, लेकिन परमात्मा की याद में रहते थे। और परमात्मा तो कहते ही हैं कि निरंतर हमें याद करना चाहिए तो हमें शक्ति मिलती ही रहेंगी। तो ये मैंने स्वयं ने अनुभव किया और अपने आप को मैंने बहुत बहुत भाग्यशाली समझा तब से लेकर के जब से उनको मिली। और मैंने निश्चित किया, डिसाइड किया कि मैं भी ऐसा जीवन जो है, इनको रोल मॉडल बनाया कि ऐसा जीवन मैं बनाऊंगी, और ऐसा बनाया।
बहुत।
मैं दूसरी एक बात पहले क्वेश्चन की कहना चाहती हूँ जो मुझे अभी याद आई कि जैन धर्म में सारे साल में त्योहार आता है एक बार और वो दिन होता है मिच्छामी दुक्कड़म। तो मैं पेरेंट्स जैन है तो जैन परिवार से लौकिक में हूं तो हमेशा हम लोग मिच्छामी दुक्कड़म कहते थे, एक दूसरे को नमन करते थे कि सारे साल में मन वचन और कर्म से मेरे से आपको कोई भी दुख पहुंचा हो तो मैं आपसे क्षमा मांगती हूं और वो भी सामने से कहते थे कि मिच्छामी दुक्कड़म। तो ये हमें जीवन के अंदर ये बहुत सुंदर रीति से स्वीकार करना है और इसमें एक बार ऐसे हुआ कि ये हमें भाव से करना चाहिए, ऊपर ऊपर से नहीं कि मैंने आपको दे दी क्षमा, ये मुख के द्वारा बोलने की बात नहीं है लेकिन ये हमारे दिल के भाव भी साथ साथ में हो। उसमें एक भाई था, उसका फ्रेंड था, एक दोनों मित्र थे आपस में, बहुत अच्छी बनती थी। एक बार कुछ हो गया, मैं बहुत शॉर्ट में सुनाती हूं, एक बार कुछ हो गया तो उसने दोनों अलग से हो गए, एक दूसरे से बात नहीं करते थे। फिर पहला जो मित्र था वो बीमार पड़ा, हॉस्पिटल में था तो उसने उसको बुलाया खास टेलीफोन करवा के कि आप जरा हॉस्पिटल में आ जाओ। दूसरा मित्र वो आ भी गया तो इसने कहा कि मैं, मेरी जो मिस्टेक हो गई थी और आपकी भी हो गई हो तो हम एक दूसरे से क्षमा मांग लेते हैं करके क्षमा मांगी। और लास्ट में फिर वो कहता है, हॉस्पिटल में है और वो कहता है अगर मैं ठीक हो जाऊं तो ये क्षमा मैंने दी है वो मैं वापस ले लूंगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसे हमारे जीवन का कभी नहीं होना चाहिए लेकिन हमेशा हमें भावपूर्वक करना है हम जो भी करें। ओम शांति।
थैंक यू दीदी, वेरी ब्यूटीफुल किस्सा। कहने का भाव ये हुआ कि दुख में तो हम दूसरों को माफ कर देते हैं। आप सोचते हैं कि समझो किसी की डेथ हो जाती है तो उस पर्सन को हम उनके बुरे कार्य से या गलत कार्य से याद नहीं करते, लेकिन अगर वही व्यक्ति अलाइव हो तो उसके बुरे कार्य सबसे पहले याद आते हैं। तो क्यों ना हम अपने मन में ये भावनाएं रखें कि मुझे किसी के भी बुरे कार्य को अपने मन में जगह ही नहीं देनी है, अच्छा ही सोचना है, अच्छा ही देखना है क्योंकि अच्छा मुझे बनना है, किसी और को नहीं। तो ये बड़ी सुंदर जर्नी रही और जिस तरह से अभी इन शॉर्ट मैं कहना चाहूंगी इस टॉक शो से मैंने जो समझा और सीखा कि इस जर्नी जो कि एम्पावरमेंट के लिए है, सबसे पहला स्टेप तो इसमें रोल मॉडल सेट करना होगा। आई होप आप सब इस बात से अग्री करेंगे। और वो रोल मॉडल कैसा होना चाहिए, जैसे दीदी ने अभी कहा और आकाश भाई ने भी कहा, इट शुड बी स्पिरिचुअल वैल्यू बेस्ड, इट शुड नॉट बी कैरियर ओरिएंटेड। वो स्पिरिचुअल वैल्यू बेस्ड होना चाहिए और ज्ञानवर्धक होना चाहिए और वो टाइम अकॉर्डिंग टू टाइम हमने मॉडल्स चेंज कर लिए ऐसा नहीं, एक मॉडल अपने जीवन में रखना। और हम ब्रह्मा कुमारी इसमें जिस तरह आप सब देख सकते हैं, आप लोग जब यहाँ इस प्रांगण में जगह जगह घूमते होंगे तो हमारे फाउंडिंग फादर के चित्र आपको कई कई जगह देखने मिलते होंगे। और इसके पीछे हमारा एक ही रीजन है, जैसे गिरिजा बहन पे सुना रही थी, हमारी दादियां। अब आप सोच रहे होंगे ये दादी शब्द किसके लिए कह रहे हैं, दादी शब्द हम अपने वरिष्ठ जो हमारे इस यज्ञ मीन्स इस इंस्टीट्यूशन के फाउंडिंग पिलर्स हैं उनके लिए कहते हैं, हमारी दादियां हैं। हम के इनके चित्र आप यहाँ बैकग्राउंड में देख सकते हैं, आप अपने पीछे अगर मुड़ेंगे तो हमारी दादियों के चित्र बहुत सुंदर यहाँ लगाए हुए हैं। और मैं ये चाहूंगी आप इनके बारे में अवश्य हमारे चैनल्स में, हमारे ब्रह्मा कुमारी का यूट्यूब चैनल आता है, हमारा अवेकनिंग का चैनल आता है, पीस ऑफ माइंड चैनल आता है, उनके बारे में जानिए ताकि आपको एक स्पिरिचुअल वैल्यू बेस्ड रोल मॉडल मिल सके और आप ये जर्नी में आगे बढ़ सके। इसी शुभकामनाओं के साथ आज का सत्र हम यहीं पूरा करते हैं।